ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्वाष्पकलाकुलेक्षण भक्त्युद्गलो गद्गदया गिराब्रवीत्। हरे कृष्ण। कल शाम के सत्र में सुन रहे थे कि श्री भगवान बलि महाराज प्रहलाद महाराज के उद्गारों को सुनकर, ब्रह्मा जी के बातों को सुनकर अंत में आदेश देते हैं बलि महाराज को कि हे इंद्रसेन, आप सुरतल लोक को जाइए, वहाँ की सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उसको चाहते हैं। भगवान पूर्ण सांत्वना के साथ बलि महाराज को भेज रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सब तरह से रक्षा करूंगा। रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम। असत संग से आपके चित्त में कोई असत विचार आ जाए तो उसको भी रक्षा करूंगा। रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्षते भवान। यत किंचित असत संग में रहने के कारण विचार बदल सकता है, कभी असत भावनाएं आ सकती हैं, गलत विचार, लेकिन मैं आपको सब तरह से रक्षा करूंगा। मैं आपकी, आपके अनुचरों की, आपकी भोग सामग्री की, आपकी चीत की, आपकी भावना की, सब तरह से सबकी रक्षा। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है कि सब प्रकार से, सभी प्रकार के विघ्नों से। आप चिंता मत कीजिए, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं रक्षा करूँगा। रक्षा करेंगे, रक्षक के रूप में दिखाई भी दूंगा। ऐसा नहीं कि केवल रक्षा करूंगा, किसी से करा दूंगा, मैं वहां रहूंगा, जब चाहेंगे आप तब मुझे देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सदा सन्निहितम वीर, हे वीर तुम धैर्य मत खो। जिस धीरता के साथ दान किया उसी धीरता के साथ संपूर्ण रूप से विश्वास करो। तत्र माम द्रक्षते भवान, वहाँ आप मुझे सर्वत्र दर्शन करेंगे, जब चाहेंगे तब तो मैं आपको दर्शन दूंगा। यह सुनकर बलि महाराज का चित्त एकदम प्रभावित हो गया। फिर कहते हैं कि वहाँ असत संग का जो भय है, तत्र दानव दैत्यानाम संगात ते भाव आशुरह, उन दैत्य और दानवों के संग रहने से संभव है असुर भाव आ जाएगा। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आ सकता है, लेकिन दृष्टवा मदनु भामुम वही सद्य कुंठो विनक्षति। लेकिन बलि चिंता करने की बात नहीं है, वहां मेरा इतना प्रभाव रहेगा कि मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर जो भाव यत किंचित कभी आ भी जाएगा तो तत्काल नष्ट हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा। अगर कहीं कुछ सुन लिया, कुछ असर आया तो प्रभावी नहीं होगा, तुरंत दब जाएगा। यह सुनकर बलि महाराज तो एकदम अद्भुत प्रभावित हुए। उस परम पुरुष, सनातन पुरुष की कही हुई बात को सुनकर अखिल साधु सम्मत महानुभाव इक्षण वाष्प कला आकुल भक्ति उद्गल बधांजलि गदगदया गिराब्रवीत। साधुओं के आदरणीय दैत्यराज बलि के आंखों में इतना आंसू आ गया, अजस्र आंसू बहने लगा, प्रेम के उद्रेक से गला अवरुद्ध हो गई। भगवान से कुछ बोलना चाहे, हाथ जोड़कर गदगद बाणी से बोले, गदगद बाणी लड़खड़ाती बाणी से बोले, बोलना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी बोलना प्रारंभ किए। तो बोल रहे हैं बलि महाराज, ये श्लोक बोलते हैं। अहो प्रणामाय कृत समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यत् लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरै अलब्ध पूर्वोपसदेशुरेऽर्पितः। बलि महाराज कहते हैं कि अहो आश्चर्य है, प्रणामाय कृतः समुद्यमः। हे प्रभु, जब आए तो मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया, मन में सोचा कि प्रणाम कर लूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से कर नहीं पाया। केवल मैं प्रणाम करने का उद्यम भर किया, मन में संकल्प किया कि प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि जो समाज था वो असुरों का था। शुक्राचार्य जैसे पंडित विद्वान लोग बैठे थे, आप छोटे बालक के रूप में बटु ब्राह्मण के रूप में आ गए, बहुत बड़े रूप में नहीं थे, तो मैं आपको बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं समझ पाया, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया सबके सामने, कुछ संकोच में पड़ गया। मन में आया था कि मैं प्रणाम करूं आपके रूप को देखकर, लेकिन प्रणाम नहीं किया, केवल सोचा कि प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करने की इच्छा हुई, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया। क्या किए बलि महाराज? जैसे सब लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, वैसे भी खड़े हो गए। भगवान के आने के बाद शुक्राचार्य आदि जितने ऋत्विक ब्राह्मण थे, सभी लोग खड़े हो गए देखकर, तो बलि महाराज भी खड़े हो गए। मन में आया कि मैं स्पेशल दंडवत कर दूं, लेकिन संकोच से नहीं कर पाया। यद्यपि खड़ा होकर के आइए, बैठिए, आदर पूर्वक आसन दिए, चरण भी धोए, सब कुछ किए, जो करना चाहिए शिष्टाचार वो किए बलि महाराज, लेकिन एक चीज का कसर इनके मन में है कि दंडवत नहीं किया। लेकिन हे प्रभु, दंडवत करने की मेरी जो इच्छा थी उसको आप जान गए, आप जान गए। प्रणामाय कृतः समुद्यमः, प्रणाम करने का जो मेरा समुचित उद्यम था, प्रयास था, उसको हे प्रभु आप जान गए। और जान करके क्या किए? प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः, आपके चरणों में जो शरणागत भक्त हैं, जो सब तरह से प्रतिदिन आपको नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी लीला कथा को गाते हैं, जो पूर्ण समर्पित भक्त हैं, उनको जो चीज प्राप्त होना चाहिए वह मुझको प्राप्त हो गया बिना किए। जो प्रतिदिन आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रपन्न भक्त हैं, नित्य प्रणाम करते हैं, एकदम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में झुके हुए हैं, प्रतिदिन आपको दिन में कई बार प्रणाम करते हैं, जब मंदिर में आते हैं तब दंडवत करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके गुणों को गाते हैं, उनको जो फल मिलना चाहिए वह फल मुझको केवल प्रणाम के संकल्प करने से मिल गया। मैंने तो आपकी भक्ति की नहीं, आपको प्रणाम नहीं किया, ऐसा दुर्लभ चीज मिल गया कि जत लोक पालई तदनुग्रहो मरई अलब्ध पूर्वो अपसदे सुरेर्पितः, जो कृपा कभी नहीं प्राप्त हुई बड़े बड़े देवताओं को, वह मुझ जैसे नीच असुर को अपसदे आसानी से सहजता से अर्पित आपने दे दिया। क्यों मिल गया? कि मैंने आपके भक्ति करने का उद्यम किया था, किया नहीं केवल प्रयास किया था, और इस प्रयास से आपने मुझको यह सौभाग्य प्रदान किया। वास्तव में आप महान हैं। प्रभुपाद जी एक दो श्लोक लिख करके इसको स्पष्ट करते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, भगवत गीता के वाक्य को यहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा भजन करने से व्यक्ति महान भय से मुक्त हो जाता है, भगवान के भक्ति में इतना बल है। फिर एक श्लोक तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके भाव को लिखते हैं कि भगवान यह विचार नहीं करते कौन विधि विधान से अर्चन भजन करता है और कौन नहीं, इसका विचार नहीं करते, केवल करने के प्रयास को ही सब कुछ मान लेते हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, मूर्खो बदति विष्णाय पंडितः बदति विष्णवे, विष्णवे विष्णु के प्रति विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है। जानकार व्यक्ति तो अपना विभक्ति जानता है, बोलता है ठीक ढंग से संस्कृत के शब्द का प्रयोग करके, और मूर्ख उसी को विष्णाय, उसको नहीं आता है कि विष्णवे कहना चाहिए, विष्णाय कहता है। लेकिन उभयो बिंदतो गोविंदम, दोनों भगवान को प्राप्त करते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान जान जाते हैं कहना चाहता है कि मैं विष्णु को प्रणाम करता हूँ, चाहे वो संस्कृत में कहे, चाहे इंग्लिश में कहे, चाहे बंगला में कहे, कह यही रहा है, कहना यही चाहता है। भगवान जान जाते हैं कि कहना यही चाहता है। जैसे कोई स्नेहवान पिता अपने तोतली बोली में बोलते हुए बालक के वाक्य को बड़ा खुशी के साथ स्वीकार करता है, वो ठीक ठीक कह भी नहीं पाता, पिताजी शुद्ध उच्चारण नहीं कहता है, तोतली बोली में पापा या कुछ कह देता है, अधूरा शब्द भी कहता है, पा भी कह दिया तो काफी है तो उससे वो खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार हे नाथ, आप भावग्राही हैं, आप जान जाते हैं कि क्या कहना चाहता है। मैंने आपकी भक्ति नहीं की, मैं तो असुर कुल में जन्मा हूँ, जन्म से ही असत संग में पड़ा हूँ, आपके शरणागत भक्तों के जैसा भक्ति मुझे नहीं करने आया, फिर भी आपने मुझको वैसे स्वीकार किया जैसे शरणागत भक्तों को, यह दैन्यता है, नम्रता है बलि महाराज की। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं आपकी प्रणाम की महिमा आज मैं देख लिया। प्रणाम करना तो बहुत दूर है, केवल प्रणाम करने का प्रयास किया। यदर्थम कृतः समुद्यम एव प्रपन्ना नाम भक्ता नाम यो अर्थ तस्य विधौ भक्ते पी तस्य संपादने समाहितो अप्रमत्तः स्थितः। अरे मैं तो अहंकार में चूर, असुरों का सरदार, काहे कोई जानने वाला, मैं नहीं जानता था, लेकिन आपने मेरे ऊपर अद्भुत कृपा किया। जो देवता है उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला, सात्विक प्रवृत्ति में रहते हैं, सत्गुणी हैं, और मैं तो असुर कुल में उत्पन्न व्यक्ति, नीच राजसी भोगों में आसक्त व्यक्ति हूँ, और मेरे जैसे व्यक्ति को आपने यह सौभाग्य दिया। क्या सौभाग्य मिल गया बलि महाराज को कि ऐसे कह रहे हैं। जो भगवान अभी बोल चुके हैं उन वाक्यों से बलि महाराज प्रभावित है कि चलो स्वर्ग से भी उत्तम लोक सूतल लोक तुमको दूंगा, वहां सारी व्यवस्था फर्स्ट क्लास की होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यवस्था तो ठीक है, स्वर्ग से भी प्रचुर ऐश्वर्य भोग मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां मैं उपस्थित रहूंगा। जैसे वैकुंठ में भगवान का दर्शन सुलभ है, वैसे दर्शन सूतल लोक में होगा, यह बहुत बड़ी बात है। जब चाहोगे तब देखोगे। यह सुनकर कहते अयम भाव परमेश्वराय तुभ्यम अहम, मैं आप जैसे परमेश्वर को मैं दिया क्या, बराग त्रिलोकी दत्वान इति एतद आस्ताम, थोड़ा सा त्रिलोकी जो आपका है वही आपको दिया। प्रणामोपि न सम्यक कृतः, प्रणाम भी ठीक से नहीं किया, दूंगा क्या, देने की तो बात बाद की है, पहले प्रणाम करना चाहिए उचित, वह भी नहीं किया। किंतु तत् अर्थम उद्यमम मात्रम कृतम, लेकिन प्रणाम करने का उद्यम किया, संकोच हो गया नहीं कर पाया, उद्यम किया प्रयास किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब बामन देव उपस्थित हुए तो बामन देव को देखकर बलि महाराज दूर से सोचे कि दंडवत कर ले, किंतु वहीं पर बहुत बड़े ब्राह्मण शुक्राचार्य जी बैठे थे, शुक्राचार्य का व्यवहार वैसा नहीं लगा। वहां बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े असुर सेनापति थे, उनकी उपस्थिति के कारण मैं वैसा नहीं कर पाया, लेकिन मन में आया कि इस ब्राह्मण को दंडवत करना चाहिए, मन में आ गया कि मैं दंडवत करूं, लेकिन समाज के कारण संकोच में पड़ गया, नमस्कार नहीं कर पाया, मन में केवल आया, लेकिन हे प्रभु आप अंतर्जामी हैं, मेरे मन के प्रयास को जान गए कि प्रणाम करना चाहता है, बस इतना से ही ये सब दे दिए, केवल जान गए, और जान करके आपने मुझको सब कुछ दे दिया जो प्रतिदिन प्रणाम करने वाले भक्तों को मिलना चाहिए, वो मिल गया। देखिए बलि महाराज बोलने में बड़े सावधान हैं। सतगुण में स्थित देवताओं को दुर्लभ है, अलब्ध है, कभी नहीं मिला, लेकिन प्रपन्न भक्त अर्थ विधौ, लेकिन प्रपन्न भक्तों को मिलता है जो सौभाग्य। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपके समर्पित भक्तों से भी बढ़ गया, सतगुणी देवताओं से बढ़ गया, देवताओं को यह सौभाग्य नहीं मिलता है। देवताओं के सामने भगवान कभी कभी आते हैं, स्वर्ग में, स्वर्ग में इतना भोग रहता है कि उसी में लोग मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, इसीलिए देवता लोग चाहते हैं कि कम साधन में भजन किया जाए, भारत वर्ष में जन्म होता, और वहां पर भजन करता गंगा के तट पर, पवित्र भारत वर्ष में तीर्थों में बैठकर भजन करता। इसलिए देवलोक में गए हुए लोग भी भारत वर्ष में आने की प्रयास करते हैं। त्रिलोकी में सबसे सुंदर स्थान भजन करने लायक भारत वर्ष है। सब जगह कुछ न कुछ, कुछ न कुछ भोग, कुछ न कुछ बाधा है, लेकिन यहाँ ज्यादा मौका है भजन करने का। चाहते हैं बड़े बड़े लोकपाल चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता, और आपके भक्त लोग इस सुख को प्राप्त करते हैं, आपका दर्शन करते हैं, नित्य प्रति दर्शन करते हैं, मन में आपका चिंतन करते हैं, आपका श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। वह सौभाग्य मुझको प्राप्त हो गया जो आप अभी कहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति उक्त्वा हरिमाम मानम्य ब्राह्मणम संभवम ततः विवेश सुतलम प्रीतो बलिर्मुक्त सहा सुरई। इति उक्त्वा, इस प्रकार बलि अभी कह रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, आंखों में अजस्र आंसू गिर रहा था, बाड़ी लड़खड़ा रही थी, कुछ निवेदन कर रहे थे, तब तक मुक्त हो गए। उनका रसी किसी को खोलना नहीं पड़ा, नाग पास में बंधे हुए थे, वरुण पास में। भगवान की इच्छा हुई, एक बार भगवान देखे और वह सर्प सरक गया, खुल कर निकल गया, और बलि महाराज का जो हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, सब मुक्त। इति उक्त्वा बलि मुक्त। इसके बाद क्या हुआ, जब बलि मुक्त हो गए, सर्प का जो बंधन था, नाग पास जो वरुण पास था, वो खुल गया, किसी को जाकर खोलना नहीं पड़ा, अपने से खुल गया, तब बलि महाराज को मौका मिल गया। अब हाथ भी खुल गया, पैर भी खुल गया, तब दंडवत प्रणाम आकर भगवान के चरणों में किए। जो प्रणाम करने का पहले उद्यम किए थे वो अब पूरा कर लिए, अनम्य भगवान के चरणों में आकर झुक गए, प्रणाम किए, श्री भगवान के हरि को प्रणाम किए, और इसके बाद सभवम भगवान शिव को प्रणाम किए, और ब्राह्मणम ब्रह्मा जी को, सभी लोग उपस्थित थे। भगवान को सबसे पहले दंडवत किए, इसके बाद शिव जी को किए, और फिर ब्रह्मा जी को किए, सबको प्रणाम किए। जैसे हो, पहले भगवान को, फिर ब्रह्मा को, फिर शिव को, जो हो वो क्रम जो हो, लेकिन पहले प्रणाम भगवान को किए, सबको दंडवत, दंडवत प्रणाम किए। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं, लेकिन अभी नहीं गए हैं, बाद में गए हैं, कहते हैं कि विवेश सुतलम प्रीतो बलि मुक्त सहासुरई। फिर असुरों के साथ बड़ी प्रसन्नता से भगवान की आज्ञा से सुतल लोक में चले गए। इसी वाक्य में चले नहीं गए, अभी रुके हैं, लेकिन कथा कहने में कह दिए कि बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रीत सह असुरई, असुरों के साथ सुतलम विवेश सुतल लोक की यात्रा किए। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानिक त्रिविष्टपम पुरित्वा दिते कामम आसात सकलम जगत। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज्य बलि से लेकर इंद्र को दे दिए, और अदिति की कामना पूर्ण की, और स्वयं उपेंद्र बनकर इस जगत की रक्षा किए, शासन करने लगे। एवं इंद्राय भगवान, इस प्रकार इंद्र के लिए भगवान त्रिविष्टपम प्रत्यानीय दे दिए, प्रत्यानीय त्रिविष्टपम, पूरा त्रिलोकी का राज बलि से लेकर इंद्र को दे दिए, और अदिते कामम पूरयित्वा, अदिति की कामना पूरा करके सकलम जगत असासत, सारे जगत का शासन करने लगे। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौतम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रमण प्रह्लाद इदम अब्रवीत। तो प्रहलाद ने अपने वंशधर पौत्र बलि को पास बंधन से मुक्त देखे, और भगवत कृपा से प्राप्त देखे, भक्ति प्रमण, भक्ति से भरे हुए प्रहलाद महाराज इदम अब्रवीत, इस प्रकार बोलने लगे। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न सर्व किमुता परेते यन्नो सुराणा मसि दुर्ग पालो विश्वाभिवंदैरपि वंदिताङ्घ्रिः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इमं प्रसादम न विरिंचि न श्री न सर्व लभ्यते। हे प्रभो, ऐसी कृपा जो बलि के ऊपर आपने किया है, ऐसी तो कृपा न ब्रह्मा को मिला, न लक्ष्मी को, न शिव जी को।
ब्रह्मा सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक हैं, सबसे बड़े व्यक्ति, उनको नहीं है सौभाग्य मिला, ऐसी कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं किए। चलो ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं किए तो लक्ष्मी पर किए होंगे, वक्ष विलासिनी है, अपने वक्षस्थल पर स्थान देते हैं, कहते हैं न श्री न इमं बिरिंचो लभते प्रसादम न सर्व, सर्व मतलब शिव जी, न शिव जी को यह कृपा प्राप्त हुआ, ते अपरे की मुत, फिर दूसरों को क्या बात है, दूसरे लोग अपर लोग की क्या कहना है, अब उनके नीचे के लोगों का नाम रखने में क्या मतलब है, अब किसी को नहीं मिला। कहने का मतलब कि ऐसा सौभाग्य, ऐसी कृपा हमने किसी के ऊपर नहीं देखी। विश्व अभिवंदई, अहो विश्व बंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की आराधना करते हैं, यत न असुराणाम दुर्गपाल असि, वही प्रभु हम असुरों के दुर्गपाल बनकर रहेंगे, आप हमारे दुर्ग की रक्षा करेंगे, दुर्गपाल असि आप दुर्गपाल बनेंगे, तो अद्भुत बात है, दुर्गपाल बन गए, नौकर बन गए, असुरों के द्वारपाल हो गए, आपने कहा अभी कहा कि रक्षिष्ये सर्वतो हम, मैं सब तरह से आपकी रक्षा करूंगा, वास्तव में आप जैसा कहे वैसा कर रहे हैं, आप इस प्रकार से असुरों के ऊपर कृपा किए हैं प्रभु। अहो विश्व के वंदनीय ब्रह्मा शिव जिनकी आराधना करते हैं, वही प्रभु हमारे दुर्गपाल बनेंगे। फिर आगे कहते हैं, यत पाद पद्म मकरंद निषेवणे न ब्रह्मा दय शरण दास्वनुवते विभूति कस्माद् वयम् कुशितयः खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवत प्रणीता। हे शरणदा, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले ब्रह्मा आदयः जत पाद पद्म मकरंद निषेवणेन विभूति अश्नुते। हे प्रभु ब्रह्मा आदि लोकपाल जिनके चरण कमलों का आराधना करके सृष्टि रचना आदि करने की शक्ति अर्जन किए हैं, अनेक प्रकार की विभूतियां प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा आदय का मतलब ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, यमराज, सब आदय। ब्रह्मा के बाद जितने बड़े बड़े प्रजाध्यक्ष लोकपाल हैं, मनु आदि, सभी लोगों ने आपके यत पाद पद्म मकरंद निषेवणे न, आपके चरण कमलों के मकरंद रस का सेवन करने के कारण विभूति अश्नुते, उनको विभूति मिली है। सब लोगों ने आपके चरणों की आराधना किया है कि जत पाद पद्म मकरंद निषेवणे न, उन्होंने आपके चरण कमलों के मकरंद रस का सेवन किया है, आपके चरणों में जो रस निकलता है, जो सुख है, उसका निरंतर सेवन करने के कारण वे लोग सिलेक्टेड हैं। वे लोग आपकी भक्ति किए हैं, आपके चरणों की आराधना किए हैं, ऐसे महापुरुषों को आप इतने बड़े पद दिए हैं, लेकिन हम किस स्तर के हैं। कस्माद वयम कुशितया, प्रहलाद महाराज कहते हैं वयम हम लोग, कस्माद कुशितया, कुशितया कुमार्ग गामी खल, वयम खल जोनयस्ते, खल जोनी में जन्म लिया, अपने पापों के कारण असुर वंश में जन्म हुआ है प्रभु, हमारे कर्म स्पष्ट है, अपने कर्मों के कारण हम असुर वंश में जन्म लिया है, तो हे प्रभु हमने ऐसा दुष्कर्म किया, खल जोनी में जन्म लिया, ऐसे कुमार गामी लोगों के बीच में जन्म हुआ, असुर कुल में जन्म हुआ, यह सिद्ध करता है कि हमने पूर्व में कोई सुकृत नहीं किया है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, बुरे कर्मों का रिजल्ट है कि हमारा जन्म असुर कुल में हुआ। और ते दक्षिण दृष्टि पदवीम कस्मात, फिर भी आपकी दक्षिणी दृष्टि हम लोगों के ऊपर है। दक्षिण दृष्टि का अर्थ है अपने शुभ दृष्टि से अपने चित्त में हमको अपना बनाया, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन हे नाथ आप मुझे स्वीकार किए कि हमारा है, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे उग्र जाति असुर वंश में जन्मा हुआ, आपके उदार दृष्टि के पथ में पड़ा, आप मुझ पर शुभ दृष्टि प्रदान किए, किस अनुग्रह का फल है, ऐसा कैसे हो गया, इस प्रकार का अनुग्रह पात्र हम कैसे हो गए, हमारे ऊपर आपकी ऐसी दृष्टि कैसे हो गई, बलि महाराज के प्रति किए गए व्यवहार को प्रहलाद महाराज अपने ऊपर मान रहे हैं, क्योंकि अपना पौत्र है। असुरों के केवल बलि को नहीं कहे हैं, आप अपने सारे समाज के साथ जाइए, सबके ऊपर मेरी दृष्टि है, आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके समाज की रक्षा, सबकी रक्षा करूंगा, यह कहे हैं। इससे प्रहलाद महाराज बहुत प्रभावित हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसी कृपा आपने हमारे ऊपर की, वास्तव में आपकी अहेतुकी कृपा है, इसमें कोई कारण नहीं है, हम लोग इस काबिल नहीं है कि आप ऐसे हमारे ऊपर कृपा करें, हमारा दुर्गपाल बन जाए, वास्तव में इसको अहेतुकी कृपा कहते हैं, इसमें हमारा कर्म कारण नहीं है, आपकी कृपा ही केवल इसका हेतु है, इसका कारण है। फिर उस पर आश्चर्य करते हैं कि आपका स्वभाव विचित्र है, फिर अनुभव करते हैं कि हाँ आपका स्वभाव अद्भुत है, उसके विषय में कहते हैं, चित्रम तवे हित महो मित जोग माया लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्त प्रियो सदसि कल्पतरो स्वभावः। अहो तव इहितम चित्रम, अहो आपकी लीला विचित्र है, अमित जोग माया लीला भुवनस्य विशिष्ट, आप अपनी अपरिमित जोग माया से इस अद्भुत जगत की सृष्टि करते हैं, विशारदस्य सर्वात्मनः समदृश, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीला, आपका व्यवहार विचित्र दिखाई देता है, अद्भुत अद्भुत विचित्र दिखाई देता है, सबके प्रति आप समान हैं, आप समदृश हैं, सर्वात्मन हैं, सबके प्रति समान व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लीला विचित्र है, क्या विचित्रता है, कहते हैं कल्पतरु स्वभाव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, जत भक्त प्रिय असि स्वभाव विषम, क्योंकि आपका स्वभाव देखा जाता है कि आप भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी आप में विषमता देखी जाती है, उपासकों के प्रति पक्षपात, भक्तों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता, यह व्यवहार आप में देखा जाता है। कल्प तरु स्वभाव भगवान के प्रति कह रहे हैं, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, सभी आचार्यों ने लिखा है विशेष ढंग से, श्रीपाद श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सब लोग भगवान के कल्प तरु स्वभाव पर लिखते हैं। अब इसको कहते हैं कल्प तरु स्वभाव, यह चित्र तो क्या है, आश्चर्य क्या है, सर्वात्मत्व चित्र चरितत्व हेतु अमित अचिंत्या जोग माया तस्या लीला तया विशिष्टानी विरचितानी भुवनानी जैन तस्या, आपकी जो अपरिमिता जोग माया है वो विचित्र जगत की रचना की है। अहो इति अत्र संधिराश्च समदृक्तत्व हेतु विशारदस्य सर्वज्ञस्य, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके स्वभाव को, सबके व्यवहार को जानते हैं, अथवा भक्त प्रियत्व पितौ वैषम्य नास्ति एव, भक्त के प्रति आप जो प्रियता का व्यवहार करते हैं विषमता नहीं है, क्यों नहीं विषमता है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं यत कल्प तरु स्वभाव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तरह है, कल्प तरु स्वभाव सन भक्त प्रियोसी, कल्प वृक्ष के स्वभाव की तरह होने के कारण आप भक्तों से प्रेम करते हैं, यानी कल्प वृक्ष का क्या स्वभाव है कि जो उसके छाया में आता है उसकी कामनाओं को पूर्ण करता है, कल्प वृक्ष के पास जो आता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है, जो कल्प वृक्ष के पास नहीं है उस पर थोड़े कल्प वृक्ष कुछ प्रभाव डालता है। नहीं कल्प तरु आशिता नामेव कामान पूर्यन अपि विषमो भवति इति अर्थ, जो कल्प वृक्ष के निकट नहीं आया उसके ऊपर कल्प वृक्ष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसी प्रकार आपके आश्रय में जो नहीं आया उसकी अभीष्ट उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो इसमें आपका क्या दोष है, आप थोड़े विषम है। अरे जो शरण में आएगा वो शरण का लाभ लेगा ना, जो आया ही नहीं तो इसमें आपका दोष क्या है। प्रभुपाद जी दूसरे उदाहरण से समझाते हैं कि सरकार या राजा सभी जनता के प्रति समान है, अपने नागरिक के प्रति सम है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि किसी विशेष नागरिक को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है
और किसी को जेल में बंद किया जाता है। तो इसमें सरकार का दोष है। अगर वह कोई कहे कि सरकार इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है, किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार, किसी को कैद, अगर ऐसा कहा जाए तो इसका क्या उत्तर है? इसमें सरकार का क्या दोष है? जो नागरिक सरकार के संविधान को फॉलो करता है, मानता है और सरकार को प्रिय करने वाले कार्य करता है, वो पुरस्कार प्राप्त करता है। जो संविधान का उल्लंघन करता है, नहीं मानता, समाज को तंग करता है, उसको कैद करना पड़ता है। ये सरकार की एक मजबूरी है। अब ये सरकार का इसमें दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार भगवान जीवों के मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, उनका दोष नहीं है। जीव अपने स्वभाव से इस तरह का कृपा भाजन या क्रोध भाजन होता है, दंड भाजन होता है, अन्यथा भगवान समदर्शी हैं। चक्रवर्ती ठाकुर इसको लिखते हैं, इनका अपना ढंग है। अहो चित्रम, आपका चरित्र क्या आश्चर्यमय है। अहो चित्रम कहते हैं युक्ति से अतीत है। जब हम इस पर विचार करते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किए, तो प्रहलाद महाराज मानो यह कहते हैं अहो चित्रम का अर्थ कि मैं खूब सोचा समझा, एक एक प्रमाण एक एक युक्ति लगाया, लेकिन यह हमारे बुद्धि से परे है आपका व्यवहार, आपकी लीला किस प्रकार विचित्र है। इसको कहते हैं समदर्शी होकर और समदर्शी हो जाते हैं। समदर्शी है, सभी जीवों के प्रति समान व्यवहार करते हैं, लेकिन आप में वैषम्य भी देखा जाता है, विषमता भी। मेरी विषमता क्या है? मान लो भगवान पूछे कि अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भागवत आचार्य महाभागवत मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हो, मैं विषम हूँ? तो कहते हैं वैषम्य माया लीला विशिष्ट भुवनस्य, अपनी माया शक्ति से इस निखिल विश्व की सृष्टि करते हैं, अतः आप सर्व सृष्टा हैं, सबको रचने वाले हैं। साथ ही विशारदस्य विशारदस्य सर्वात्मनः, एक एक चीज जानते हैं, एक क्यों ऐसा कर रहा है। आप चाहते तो उसको गाइड करते, लेकिन छोड़ देते हैं, चुपचाप वो अपने ढंग से करता है। आप जानते हैं ना, आपके अनजान में कोई गलती नहीं ना करता है। परमेश्वर के रूप में हृदय में भी रहते हैं, गलती करने वाले के हर एक क्रिया को जानते हैं, हर एक चीज को जानते हैं। सर्वात्मनः कहकर कह रहे हैं कि आप अगर स्विच ऑफ कर दे तो कुछ नहीं करेगा, आप ही उसके अंदर चेतना देते हैं, चेतयिता आप हैं। उसके अंदर जो समझ है, सोच है, क्रिया है, परमात्मा के रूप में हृदय में रहकर सब कुछ करते हैं, आप ही करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, आप जान रहे हैं, वही हैं, जीव के साथ साथ रहते हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, मत करो। इस प्रकार आपकी सम दृष्टि प्रसिद्ध है, सबके साथ यह व्यवहार समान रूप से करते हैं, भक्त के साथ अभक्त के साथ, सारी शक्ति आप प्रदान करते हैं। तब हमारा वैषम्य क्या है? माने भगवान पूछे कि भाई जो नहीं भजन करता है उसको भी मैं चेतन प्रदान करता हूँ, चेतयिता उसका भी हूँ, उसको भी शक्ति देता हूँ, उसको भी सामर्थ्य देता हूँ, तो हमारा दोष क्या है? तब कहते हैं भक्त प्रिय, आप सृष्टि में जो आपका भजन करता है उसके प्रति आप प्रेम करते हैं और दूसरे के प्रति नहीं करते हैं, यह आपका वैषम्य है। जो भजन करता है उससे तो बहुत प्रेम करते हैं, जो नहीं करता उसको छोड़ देते हैं, यह आपका वैषम्य है। तो प्रहलाद थोड़ा सोच कर बताओ इसमें मेरा दोष क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप दोषी हैं, आपका यह वैषम्य है, यह विषमता स्पष्ट है कि भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्तों से नहीं, लेकिन इसमें हमारा दोष क्या है? मैं तो एक समान सूर्य का प्रकाश दिया, एक समान ऑक्सीजन सबके नाकों तक सप्लाई करा रहा हूँ, सबको धरती में पानी पीने का है, सबको अन्न मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि जो भक्त है उसके पास ऑक्सीजन आता है, जो नहीं भक्त है उसके नाकों तक दूसरा हवा आ जाता है, ऐसा तो नहीं करता ना। सूर्य का प्रकाश भी एक समान सारे जगत को मिलता है, भजन करे या ना करे, सबको देता हूँ, तो फिर हमारा इसमें क्या दोष है? तो कहते ना ना प्रभु, मैं आपका दोष नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपका दोष नहीं बता रहा हूँ, आपका महान गुण है कल्प तरु स्वभाव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, अर्थात कल्प तरु जिस प्रकार अपने आश्रित की कामना पूरा करता है, अनाश्रित का नहीं,
जो कल्प वृक्ष के आश्रय में आता है उसी की कामना पूरी होती है, जो नहीं आता उसकी नहीं। उसी प्रकार आप भजन परायण व्यक्ति से प्रीति करते हैं, वास्तव में इसमें आपकी समता ही प्रदर्शित है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विषम हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक को भी चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। आप भगवत गीता में कह चुके हैं कि भाई हम क्या करें, मैं तो समान हूं, लेकिन जो भक्त भक्ति पूर्वक हमारा भजन करता है, मुझ में आसक्त है, मैं भी उसमें आसक्त हो जाता हूँ। क्या करूं, नहीं करूंगा तो भी बेईमानी हो जाएगा, तो इस प्रकार मुझे करना पड़ता है। कल्प तरु का दृष्टांत एक अंश में केवल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान बस उस वृक्ष की तरह ही है, जो आएगा उसको कर देंगे, जो नहीं आएगा नहीं करेंगे। कारण कि कल्प वृक्ष स्व आश्रित व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता है, उसकी कामना पूरी कर देता है, लेकिन व्यक्ति जो छाया में आया उसके प्रति आसक्त नहीं होता, आश्रित के बैरी से विद्वेष नहीं करता है। किंतु भगवान अपने भक्त के रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रहलाद में आसक्त होकर प्रहलाद के बैरी उनको तंग करने वाले हिरण्यकश्यपु का वध भी कर दिए। आप अपने भक्तों के प्रति आसक्त हो जाते हैं प्रभु, अपने भक्त के रक्षा के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी बदनामी मोल ले लेते हैं। तो इसमें आपका दोष नहीं है प्रभु, ये तो आपका स्वभाव है। जो आश्रित व्यक्ति है वो सुख को प्राप्त करता है। तब श्री भगवान कहते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाही सूत लालयम मोदमान सपौत्रेण ज्ञाति नाम सुखमावह। वत्स प्रहलाद भद्रम ते, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। ते भद्रम सूत आलयम प्रयाही, तुम भी सूतल लोक में जाओ। सपौत्रेण मोदमान ज्ञाति नाम सुखमावह, मैं भी जाऊं। प्रहलाद महाराज तो वैकुंठ में भगवान के साथ पार्षद के रूप में रहते हैं, तो कहते हैं हाँ अभी जाओ, थोड़ा हतोत्साहित हो गया है बलि, उसके साथ जाओ, बलि के साथ आनंद प्रदान करने के लिए जाओ। त्रिलोकी का राज्य छीन लिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, इतना भारी अपमान हुआ, कुछ मन में हताश हो गया है, तो आप साथ में जाइए, इसको समझा बुझा कर रखिए। भगवान का कितना स्नेह बलि के प्रति है, आप जाइए। मोद मानो सो पौत्रेण, अपने पौत्र के प्रति उसको आनंद में रखिए। ज्ञातिनाम सुखमावह, वह बंधु बांधवों के साथ अपने जाति गोतिया परिवार के साथ ठीक से रहने लगे, सुख का अनुभव करने लगे। कुछ दिन उसको दिक्कत महसूस होगा कि कहां स्वर्ग का राजा और कहां सूतल लोक में आ गया। आप जाओ, सारी सुविधा है, आप जाकर उससे सुख पूर्वक उसको रखो, साथ में जाओ। फिर कहते हैं प्रहलाद महाराज से भी कहते हैं, नित्यम द्रष्टा सीमाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मद दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। हे प्रहलाद, वहां आप मुझको सदा हाथ में गदा लिए हुए देखोगे, मैं वहां एकदम पहरेदार के रूप में खड़ा रहूंगा, और मेरे दर्शन के आनंद में मग्न होने के कारण आपके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। कर्म बंधन क्या है? महालाद कर्म निबंधनम ध्वस्त। प्रहलाद महाराज बलि महाराज में कर्म बंधन क्या है? कहते यत किंचित मत दर्शने न जो महालाद तेन ध्वस्तम कर्म निबंधनम अज्ञानम जस्य। कहते मेरे दर्शन के प्रभाव से इतना आनंद आएगा ना, इतना आनंद आएगा कि अपने कर्म निबंधनम कर्म से होने वाले अज्ञान, कभी कभी मन में अज्ञान छा जाए, असुर भावोचित व्यवहार आ जाए, ये सब नहीं होगा। जो बलि महाराज से कहे वही यहाँ कह रहे हैं कि कर्म निबंधनम कर्म जनित अज्ञान नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप जाओ। तो इस प्रकार बलि महाराज और प्रहलाद महाराज अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। श्री शुक उवाच, आज्ञाम भगवतो राजन प्रहलादो बलिना सह बारहमित्यम अलम प्रज्ञ मूर्धनाध्याय कृतांजलि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, विशुद्ध बुद्धि अमल प्रज्ञ प्रहलाद, प्रहलाद महाराज और बलिनाम सह बारहमित्यम, बलि के साथ प्रहलाद महाराज दोनों हाथ जोड़कर बहुत अच्छा प्रभु ऐसा कहकर, कृत अंजलि भगवतम आज्ञाम
मुन्ना अधाय, हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को स्वीकार किए, सिर झुकाकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किए, भगवान का चरण अपने सिर पर लिए, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, और इसके बाद कहे ठीक है प्रभु जो आज्ञा। तो परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुर चमूह पति प्रणतः तद अनुज्ञात प्रविवेश महाबिलम। परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुर चमूपति, सारे असुर सेनाओं के साथ, सेनापतियों के साथ आदि पुरुष भगवान को प्रणाम किए, प्रहलाद महाराज प्रणाम किए, बलि महाराज प्रणाम किए, और जितने असुर सेना नायक थे सभी लोग बारी बारी से आकर प्रणाम किए। प्रहलाद महाराज कहे होंगे प्रणाम करो चलना है, अब चलेंगे तो हो सकता है असुर लोग, कुछ लोग वहीं खड़े हों और नहीं करना चाहते हों, तो कहते हैं कि चलो प्रणाम करो। अब जब प्रहलाद महाराज प्रणाम कर रहे हैं, बलि महाराज कर रहे हैं, तो सारे सेना नायक सर्व असुर चमूपति और जो वहां बचे हुए थे सभी लोग, और तो सब चले गए थे पहले ही, लेकिन कुछ लोग खड़े होंगे साथ में होंगे, तो उन सेना नायकों के साथ आदि पुरुष भगवान को प्रणाम किए और तत् अनुज्ञात परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रम्य परिक्रमा कर रहे हैं आदि पुरुष का, बार बार घूमकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर खड़ा हो जाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं भगवान को छोड़कर, परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, फिर खड़ा हो जाते हैं, तब भगवान फिर अनुज्ञात जाइए। अनुज्ञात का मतलब है कि भगवान को बार बार कहना पड़ा, रिपीटेशन करना पड़ा, जैसे अनुगमन करते हैं पीछे चलना बार बार, तो बार बार भगवान को कहना पड़ा प्रहलाद जाइए, इन लोगों को ले जाइए। ठीक है प्रभु, प्रणाम करते हैं और फिर रुक जाते हैं, कहते हैं जाइए। तो इस प्रकार बार बार भगवान के भेजने पर बलि और प्रहलाद असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की, चले गए महाबिलम प्रविवेश, सूतल लोक में चले गए। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज उस यज्ञशाला से अनुपस्थित हैं, यहाँ आप अपने दिमाग में रखिएगा, वो चले गए। और अब श्री भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, और वहां पर शुक्राचार्य, सारे ब्राह्मण समाज अभी है, देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इंद्र, सब लोग वहां उपस्थित हैं, लेकिन अब बलि और प्रहलाद नहीं है। इसके बाद अब भगवान का क्या आगे का कार्यक्रम है उसको, उसका वर्णन दूसरे सीटिंग में, अब भगवान क्या करेंगे व्यवहार उसको सुनिए। हरे कृष्ण।